ओम शांति। जैसे जैसे अंत का समय समीप आता जा रहा है, हम सभी देख रहे हैं संसार में हलचल बढ़ती जाती है। उधर हलचल और इधर हमारी स्थिति अचल और अडोल बनती जाए। कभी हम अनेक आत्माओं को हलचल के प्रभाव से मुक्त रख सकेंगे? तो हलचल तो बढ़ेगी, क्योंकि परिवर्तन होना है, नई दुनिया आनी है। लेकिन हम अपने अंदर ये देखें, क्या मेरी स्थिति इतनी शक्तिशाली पावरफुल बनी है जो कोई परिस्थिति मेरी स्थिति को प्रभावित नहीं कर सके। एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक जगह हम सेवा पर गए, बैठी कराने की सेवा। अब हमारा प्रोग्राम तो 3 महीने पहले फिक्स हो गया था और बट्टी की डेट के 5 दिन पहले पता चला वहां बहुत बड़ा साइक्लोन आ रहा है, समुद्री तूफान। बहन जी का फोन आया, भाई जी क्या करें, बट्टी कैंसिल करें, रखें ना रखें। हमने कहा भाई बाबा का कार्य है, कराने वाला बाबा बैठा है, जैसे प्रोग्राम बना हुआ है आप वैसे ही रखिए, बाबा सब कुछ ठीक कर देगा। बाबा को भी याद कर कहा, प्रकृति को भी योग का दान दिया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर प्रकृति को दान दे रहे हैं, और हे प्रकृति देवी हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस स्थान पर हम अभी हैं उस स्थान पर वहां सब कुछ ठीक रहना चाहिए, आगे पीछे भले कुछ भी हो। ऐसा बाबा से वाइब्रेशन लेके प्रकृति को योग का दान दिया। मान लो आज रात को हम वहां पहुंचे, कल सुबह से बैठी है। कल सुबह क्लास के पहले एक भाई हमारे कमरे में आता है और कहता है, भाई साहब मैं अभी टीवी न्यूज देख के आ रहा हूं, तो जो साइक्लोन इधर आने वाला था ना, वो घूम के दूसरी साइड चला गया, इधर नहीं आएगा। तो इस तरह से जहां स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाती हैं। तो हमें अपनी स्थिति को इतना शक्तिशाली पावरफुल बनाकर चलना होगा जो कोई परिस्थिति हमें प्रभावित ना कर सके। मम्मा डे के बाबा के संदेश में भी आप सबने सुना हो, अब ऐसा समय आ रहा है अनेक आत्माओं को शांति शक्ति पवित्रता के पावरफुल वाइब्रेशन देने होंगे, मास्टर दाता बनकर देना होगा तुम्हें। और जो कुछ आज देख रहे हैं दुनिया में हलचल, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ये सब बढ़ती जाएंगी, लेकिन जिन्होंने अपनी स्थिति को शक्तिशाली पावरफुल बनाया होगा वो सभी आत्माएं सेफ रहेंगी। अभी भी आप सबने सुना हो वेनेजुएला में बहुत बड़ा भूकंप आया है, मोस्टली शहर खत्म हो गया है। उसमें ही अपना बाबा का सेंटर था, 14वीं मंजिल के ऊपर, लेकिन उस जगह सब कुछ ठीक ठाक है। तो हमें केवल अपने लिए ही नहीं, अब दूसरों को शक्तिशाली बनकर दाता बनकर देना होगा। तो हर एक चेक करें, अब अपने लिए योग नहीं बल्कि विश्व की अनेक आत्माओं को शांति शक्ति पवित्रता के दाता बनकर हमें देना है। इतना अपने अंदर शक्तियों का गुणों का स्टॉक जमा करना है। एक अव्यक्त बाप दादा के संदेश में बाबा ने यह बात बताई, उसका सार एक लाइन में यही है कि परिवर्तन ही प्रगति का साधन है, परिवर्तन ही प्रगति का उन्नति का साधन है। अगर हम प्रगति चाहते उन्नति चाहते हैं तो जब भी बाबा जिस मुरली में जो कुछ हमें परिवर्तन का इशारा दे, जो होमवर्क दे, जो करने को कुछ कहे, यदि हम तुरंत वैसा करके चलते हैं तो उसमें बहुत बड़ी सफलता समाई हुई है, क्योंकि बाबा हमें वही इशारा देते हैं जो हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं जो नहीं कर सकते हो वो बाबा कहे। तो इसलिए बाबा ने कहा मुझे करना ही है, बनना ही है, तो निश्चित रूप से वैसे बनते चले जाएंगे। तो और वास्तव में अगर गहराई से देखा जाए तो सभी समस्याओं का समाधान ही है योग। योग के चार्ट को हम कम से कम 4 घंटे का अवश्य बनाएं, 1 दिन का, ज्यादा आप जितना भी बना सकते हो, 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते हो। अगर आपका 1 दिन का योग का चार्ट 4 घंटे का कम से कम है तो आप समस्या परिस्थितियों के लेवल से फिर ऊपर उठ जाएंगे। बातें समस्या परिस्थितियां आएंगी लेकिन आपकी स्थिति को प्रभावित नहीं करेंगी। एक अनुभव, एक सेवाधारी माता हमारी आंगन में ही सेवा है दिन के समय सिक्योरिटी की, तो सेवाधारी माता आई, भाई जी मेरी ये समस्या, वो समस्या, वो समस्या, वो समस्या, 8-10 समस्याएं गिना दी, मैं क्या करूं। तो हम कहीं बाहर जा रहे थे उस दिन, तो हमने माता जी को कहा माता जी मैं बाहर जा रहा हूं 5 दिन के लिए, तब तक आप 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते योग कर लो रोजाना 5 दिन तक। हम बाहर चले गए, माता जी योग करती रही 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते, और 5 दिन के बाद जब हम वापस आए तो मिलने के लिए आई तो पूछा बोलो माता जी क्या समस्या है। तो माता जी कहती है भाई साहब मेरी तो कोई समस्या ही नहीं है। तो समस्या कहाँ है, क्यों ज्यादा है, जहां हमारा योग बाबा से कम है अथवा नहीं है। और ऐसा नहीं था कोई 5 दिन में उसकी समस्या खत्म हो गई थी, समस्याएं थी तभी भी, लेकिन उसका जो पुरुषार्थ का लेवल है, योग का चार्ट है, वो समस्याओं के लेवल से अधिक हो गया, ऊंचा हो गया, इसलिए उसको वो बातें समस्या समस्या नहीं लगी, एक साधारण सी बात बनकर रह गई। तो हमें अब समय आया है, हम सब रोजाना ज्ञान योग सुनते हैं करते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसका प्रयोग कर विजयी बनने का, क्योंकि परिस्थितियों को हम आने से नहीं रोक सकते, अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं, अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। आज कईयों के सामने, कईयों का पुराने स्वभाव संस्कार विघन रूप बने हुए हैं पुरुषार्थ में, कईयों को दूसरों की तरफ से विघन आ रहे हैं, कईयों को अपने ही बीमारियों का विघन पुरुषार्थ में रुकावट डाल रहा है, और किसी को कोई विघन, किसी को कोई विघन। तो उन सब में बातें, विघन, परिस्थितियां, कर्म का हिसाब किताब, ये सब आएगा चुक तो होने के लिए, लेकिन हमें उन सब को के प्रभाव से मुक्त रहना है, तो उन सब में योग का प्रयोग कर चले। एक माता जी का फोन आया, कहने लगी भाई जी मेरी एक बच्ची है 10 से 12 साल की होगी, और पढ़ाई में उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है, सारा दिन मोबाइल में बिजी रहती है, और बहुत गुस्सा करती है, मैं बोलती हूं तो बहुत गुस्सा करती है, मेरे एक बात नहीं मानती, क्या करूं मैं, परेशान हूं। हमने उन्हें बताया माता जी आप उन्हें परिवर्तन करना चाहते हो तो बोल के तो देख लिया कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अब योग का प्रयोग करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर और उस आत्मा को दे रही हूं। अमृत विले जब वो सोई हुई हो तब, ऐसे रोजाना 1 घंटा 21 दिन योग करो। और माता जी ने योग करना शुरू किया, पूरा किया या 10-12 दिन किया वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद ही वो माता जी का फोन आया, भाई जी आपने जैसे बताया हमने प्रयोग किया और अब उसमें काफी परिवर्तन है और मोबाइल देखना भी उसने छोड़ दिया है और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने लगी है, और मैं कुछ भी कहती हूं तो अब उसका कोई जवाब नहीं देती। तो इस तरह से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में या संस्कार स्वभाव में जो हम कहने से व्यक्ति नहीं बदल पाता है उसको योग के पावरफुल वाइब्रेशन दो, अमृत मिले। ये तो दूसरों की बात हुई, लेकिन अपने स्वभाव संस्कारों का भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। कई टीचर बहनें बैठी हैं, पूछती रहती हैं, सेवा नहीं बढ़ती भाई, क्या करें? बहुत मेहनत करके देख ली, सेंटरों पर स्टूडेंट की संख्या नहीं बढ़ती है, होगी ना बहुतों की समस्या। तो पहले तो इस बात को हमें अपने मन से निकालना है, सेवा नहीं बढ़ती है। ठीक है, आपको पता है सेवा नहीं बढ़ रही, लेकिन उसके लिए हमें पॉजिटिव संकल्प करना है उसकी जगह। बाबा मुझे यहां की सेवा बढ़ानी है, आपने इसमें सहयोगी बनना है। दूसरा, अमृत वेले जब योग करें, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, ज्ञान सूर्य शिव बाबा से ज्ञान प्रकाश की किरणें लेकर इस शहर की सभी आत्माओं को दे रही, इमर्ज करो उन्हें, ये अभ्यास करो। और ये ज्ञान की पावरफुल किरणें सभी आत्माओं तक पहुंचे और उनके अंदर जागृति आए, हे आत्माएं जागो, भगवान आए हैं, उसे जान के पहचान के अपना जन्म सिद्ध अधिकार का वर्षा लो। इस तरह से अमृत वेले योग करो। श्याम को जब योग करें, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, विश्व कल्याणकारी शिव बाबा से शुभ भावना शुभ कामनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन लेकर यहां की सभी आत्माओं को दे रहे हैं, ये आत्माएं जागो, भगवान आए हैं, उसे जान के पहचान कर सतयुगी राजाई का जन्म सिद्ध अधिकार का वर्षा प्राप्त करो। इस तरह से सुबह अमृत वेले श्याम को दोनों टाइम योग अभ्यास करिए, निश्चित रूप से सेवा बढ़ेगी, कईयों के अनुभव। अपनी शारीरिक बीमारियों पर भी आप पुरुषार्थ करना चाहते हैं, शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाते, बहुत दवाई गोली खा रहे हैं फिर भी तबीयत ठीक नहीं हो रही, कईयों के सामने ऐसी सिचुएशन। और अधिक समय तक बीमारी चलने के बाद व्यक्ति हिम्मत हार जाता है। बाबा की अव्यक्त मुरलियों की स्टडी हम करते रहे, उससे आपको बहुत नई नई और शक्तिशाली पॉइंट मिलेंगी, एक प्रयोग करने की विधि मिलेगी और हम अपने ऊपर भी प्रयोग करें। सबसे पहली बात तो इस विचार को अपने मन से निकालें कि मुझे ये बीमारी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के अंदर जब कोई भी बीमारी होती है तो वो विचार मन में रख लेते हैं कि मुझे ये बीमारी है। अब बाबा ने तो कहा ये जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओगे। ठीक है, बीमारी आई है, कर्म का हिसाब किताब है चुक तो होने के लिए, लेकिन बाबा मुझे ठीक होना है, आपने मुझे ठीक करना है, मेरी बीमारी ठीक होती जा रही है, पॉजिटिव सोच। तो जैसा सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे। एक छोटा सा अनुभव पहले भी सुनाया हमने, हम सेवा पर जा रहे थे कहीं, तो आबू रोड से ट्रेन में बैठे तो सीट के नीचे सामान रख रहे थे, तो लोहे की कुछ ऐसी नुकीली चीज थी कील जैसी, तो उंगली को लग गई और 1 इंच उंगली कट गई ऊपर से, और दर्द भी बहुत होने लगा, खून भी निकलने लगा। अब ट्रेन तो चल पड़ी, ट्रेन में तो कोई दवाई गोली की बात नहीं है, लेकिन ये देखकर हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं आया। मैंने कहा ये भी किसी जन्म का हिसाब किताब होगा, थोड़े में ही चुक तो हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, बाबा बैठा है सब ठीक कर देगा, पॉजिटिव सोच। और सीट पर बैठ गए, यही उंगली थी, इस उंगली के ऊपर ऐसे दूसरी उंगली रख ली और इस तरह से सामने करके और संकल्प शक्ति का प्रयोग किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियां लेकर इस उंगली के ऊपर डाल रहा हूं। इस तरह से दृष्टि देते हुए 25 बार संकल्प किया और उसके बाद उंगली हटा ली। खून निकलना बंद, दर्द भी काफी कम हो गया और 15-20 मिनट के अंदर बिना किसी दवाई गोली के सब कुछ नॉर्मल हो गया। इतनी बड़ी शक्ति हमारे एक एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प। तो हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बना के चले। कैसी भी समस्या, परिस्थिति, विघ्न, बीमारी आ जाए, लेकिन कभी भी अपने मन के अंदर कमजोर नेगेटिव विचारों को नहीं लाना है। ज्यादातर केस में यह देखा गया है कि उन विचारों को हम साथ में लेके घूम रहे हैं, भरा हुआ है अपने मन में, मुझे ये बीमारी है तो रहेगी, तो उसको पॉजिटिवली चेंज करें विचार। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर क्लास करा रहे थे, उन्होंने अपनी क्लास में बात बताई कैसे मन के विचारों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अब हर एक चेक करना ये बात सुनकर अपने आप को, कि जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है, अब हर एक चेक करना जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है, इससे सिद्ध होता है कि आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अब हम पूछ लें अपने आप को कि हम बनना क्या चाहते हैं और विचार क्या चल रहे हैं हमारे मन के अंदर सारे दिन में। लक्ष्य तो रख लिया आपने निरंतर योगी या फरिश्ता बनने का या जो भी है, और विचार चल रहे हों सेवा के, धंधे धोरी के, दुनिया भी या इधर उधर के, व्यर्थ के, कैसे उस मंजिल पर पहुंच पाएंगे। तो जो लक्ष्य रखा है वैसा ही संकल्प निरंतर हमारे मन के अंदर बना रहना चाहिए। ये मेरी मंजिल है, मुझे ये करना है, तो उसके लिए क्या क्या करना है वो प्लानिंग करके वैसा प्रैक्टिकल करके चले तो आप उस मंजिल पर पहुंच सकेंगे। तो कैसे हमारे मन के विचारों का प्रभाव हमारे मन, शरीर और कार्यों पर पड़ता है, कम लोगों का ध्यान जाता है इस बात की ओर, नहीं तो जो देखा जो सुना उसका ही चिंतन चलना शुरू हो जाता है। एक प्रैक्टिकल का अनुभव पहले मैं सुनाता हूं, एक नेगेटिव विचार का अनुभव, ताकि हम अपने आप को उससे बचा सके, क्योंकि नेगेटिव विचारों की दुनिया में रहते हैं तो निरंतर उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही है। अगर हमारे अंदर पॉजिटिव विचारों का खजाना नहीं है तो एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा गलत कार्य किया तो कोर्ट ने उसको मौत की सजा सुना दी। ये समाचार टीवी पर पेपरों में आ गया। ये समाचार एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को पता चला तो उसने सोचा फलानी डेट को फलाने व्यक्ति को फांसी चढ़ाया जा रहा है, तो क्यों ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मैं इस व्यक्ति को अपने पास ले लेता हूं, मैं भी इसको मारूंगा लेकिन कुछ प्रयोग करके मारूंगा ताकि दूसरों के लिए कुछ नई चीज निकल आए। तो इस लक्ष्य को लेकर उसने कोर्ट में अर्जी दाखिल की और कोर्ट ने उसकी अर्जी को मंजूर कर लिया, लेकिन दो शर्त रखी कि हम इस व्यक्ति को आपको देंगे लेकिन एक तो पुलिस हिरासत में ही ले जाना होगा और दूसरा कुछ भी प्रयोग करो लेकिन इसको मारना जरूर है, क्यों कोर्ट का आदेश था। तो दोनों शर्त उसने मंजूर की, दो पुलिस वाले भी आए, एक डॉक्टर को बुला लिया और एक व्यक्ति को बुला लिया, 5-6 लोग सभी एक बंद कमरे में बैठ गए। तो जिस व्यक्ति को फांसी चढ़ाया जाना था उसको मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने कहा, देखो भाई हम आपको फांसी नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन जो ये बैग रखा है ना, इसमें हमने एक सांप को पकड़ कर रखा है और सांप को आपके पास लाके छोड़ेंगे और सांप आपको काटेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उसको पहले से बता दिया और उसके बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि वो सांप को देखकर डरे नहीं। फिर जो एक व्यक्ति बुलाया हुआ था मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने, उस व्यक्ति को कहा भाई जाओ बैग को उठा के लाओ और इसके पास लाके सांप को छोड़ दो। वो व्यक्ति गया, उसने बैग उठाया और उसके पास लाके बैग रखा, उसकी चेन खोली और कहा कि मैंने अभी सांप को छोड़ दिया है। था उस बैग में कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी तो आंखें बंद थी, दिखाई नहीं दे रहा था, कानों से जरूर सुन रहा था। जब चेन खोली तो उसको आवाज भी आई कि हाँ अभी इन्होंने सांप को छोड़ दिया है। और उसके एक मिनट बाद वो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर उस व्यक्ति के पास गया और उसके पैर में ऐसे हल्के से पिंच बो दी, और पिंच बोने के बाद उसको लगा कि मेरे को अभी सांप ने काट खाया है, अब मैं मर जाऊंगा। ये विचार उसके मन में धीरे 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 गहराई तक समाता चला गया और 15 मिनट के बाद उसके मुख से झाग निकलने लगे और आधा घंटे के बाद उसने शरीर छोड़ दिया। तो जब शरीर छोड़ दिया तो उसके बाद दूसरा जो एक डॉक्टर बुलाया हुआ था, उस डॉक्टर को मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने कहा भाई अभी आप इसके शरीर का थोड़ा सा खून लेकर चेक करो। तो उसने उसके शरीर का खून लेकर चेक किया तो उसने पाया कि उसके सारे खून में सांप का जहर कहां से आ गया, सांप ने तो उसको काटा ही नहीं था, कहां से आ गया? संकल्प के द्वारा, क्योंकि उसके मन में यह संकल्प फिट बैठ गया था कि मुझे सांप ने काट खाया है, अब मैं मर जाऊंगा। तो इस संकल्प ने उसके शरीर पर वैसा ही प्रभाव डाला। तो देखो एक नेगेटिव विचार में वो शक्ति है जो हम संकल्प करते हो जाता है, वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तो पॉजिटिव पावरफुल संकल्प में तो उससे कहीं कई गुना बढ़कर शक्ति है, तो हम क्या नहीं कर सकते। अब सुनिए एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प का। एक बाबा के बच्चे थे, उनको कैंसर हो गया था और अंतिम स्टेज में पहुंच गया था और डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया कि आप केवल 4 महीने ही जीवित रहेंगे, जो करना है कर लीजिए। लेकिन उस भाई ने इस विचार को अपने अंतर मन में ही नहीं आने दिया। जैसे ही डॉक्टर की बात सुनी उसने एकदम पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया कि नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे भगवान की अक्की सेवा करनी है और इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है। एकदम पॉजिटिव पावरफुल संकल्प। तो देखो ये नियम है, हम सभी का शरीर बॉडी जिन सेलों से बना है वो हर एक व्यक्ति के शरीर के सेल हर 4 महीने के अंदर कंप्लीट चेंज हो जाते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने खत्म होते जाते हैं। ये प्रक्रिया हर एक के शरीर में ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो नए सेल्स का निर्माण शरीर में किस आधार से होता है? जैसा हम संकल्प कर रहे हैं। तो उसने जब ये संकल्प किया मुझे जिंदा रहना है, भगवान की सेवा करनी है, इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है, तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने उसके शरीर में वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल सेल्स का निर्माण करते चले गए और जो कैंसर बीमारी के नेगेटिव सेल थे वो धीरे धीरे कर खत्म होते गए। क्योंकि पॉजिटिव सेल्स बनते गए तो नेगेटिव सेल्स खत्म होते गए। और आज इस बात को लगभग 16 साल होने को आए हैं, वो व्यक्ति आज तक जिंदा है, भगवान की अक्की सेवा कर रहा है, कंप्लीट कैंसर मुक्त हो गया है। तो सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है। यदि हम ये निश्चय कर लें कि मुझे बाप समान निरंतर योगी या फरिश्ता बनना ही है, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको वैसा बनने करने से रोक नहीं सकती है। अब आप सोचेंगे छोटी मोटी समस्या कईयों के सामने होती है तो हम भी प्रयोग करें, ऐसे अनुभव सुनने के बाद निश्चित रूप से प्रयोग करो। लेकिन योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए 5 बातों की आवश्यकता है। उन 5 बातों को हम अपने जीवन की धारणा में लाएं और फिर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पहली बात, हमारा जो बताया हमने, एक दिन का योग का चार्ट कम से कम 4 घंटे का अवश्य होना चाहिए, 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते हुए। दूसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता के लिए निश्चित स्थान और निश्चित समय का होना जरूरी है। एक ही स्थान पर एक ही समय रोजाना योग करें, जितने भी दिन करना हो, तो सफलता मिलेगी। तीसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता के लिए जैसी समस्या, जैसी परिस्थिति, वैसे ही स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करें। कहीं मान लो दुख दर्द की समस्या है तो मैं मास्टर दुखहर्ता सुख करता हूं, कहीं शांति की आवश्यकता है तो मैं पीस हाउस आत्मा हूं, कहीं शक्ति की आवश्यकता है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। जैसी समस्या, जैसी परिस्थिति, वैसे ही स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करें। चौथी बात, योग के प्रयोगों में सफलता के लिए हमारे मन की निस्वार्थ भावना, शुभ भावना, कल्याणकारी भावनाओं का होना बहुत जरूरी है। और पांचवी बात, पावरफुल स्थिति का होना जरूरी है। इन पांचों बातों को आप अपने जीवन की धारणा में लाएं और फिर प्रयोग करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और अब आप सोचेंगे चार घंटे योग का चार्ट कैसे बने, आधे कुछ दिन पहले तो बाबा ने आठ घंटे योग की बात कही थी। तो जितना भी चाहें आप, उतना अपने योग का चार्ट बनाया जा सकता है ये तीन अभ्यास रोजाना की दिनचर्या में करके चलो। लेकिन करना पड़ेगा, हम सुनते तो बहुत हैं लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बात आती है तो वहां नंबर वार हो जाते हैं। तो अगर आपने जीवन में किसी भी कार्य में सफलता पानी है तो वैसा प्रैक्टिकल करके चलना बहुत जरूरी है। तो तीन अभ्यास, पहला कल की मुरली में बाबा ने वो बात बताई है, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। क्या होगा इससे? कल की मुरली में बाबा ने कही ये बात, आत्मा देखने से क्या होगा? खुशबू फैलती रहेगी। खुद को आत्मा समझकर दूसरों को आत्मा देखने से खुशबू फैलती रहेगी और देह भान माने से क्या होता है? बदबू फैलती है। तो ये अभ्यास भट्ठी में आए आप सब, तो देखो इस भट्ठी का पूर्ण आनंद अनुभव करने के लिए, और अपने योग के चार्ट को एक जितना चाहे आप निश्चित कर ले, मुझे इतना योग का चार्ट बनाना है, और ये अभ्यास करके चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका उतना बन सकता है, बनाया जा सकता है बहुत इजी रीति से। लेकिन उसके लिए और सब बातों से अपने आप को अलग करना होगा। सब कुछ करते हुए ये तीन अभ्यास रोजाना की दिनचर्या में करके चलो। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 5-10-15 मिनट के बाद, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बिंदु बन जाओ, निराकारी बन जाओ, अशरीरी बन जाओ। क्या होगा इससे? जैसे ही हम अशरीरी बनते हैं तो आत्मा स्वतः इस देह और देह की दुनिया के सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त होकर उस सर्वशक्तिमान बाबा की छत्र छाया के नीचे आ जाती है, और जिनके ऊपर सर्वशक्तिमान भगवान की छत्र छाया हो उसका दुनिया में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बाबा आपको वहां मौत के मुंह से भी निकाल कर बाहर ले आया। और बाबा की ये भी महावाक्य है, बच्चे यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, पास विद आनर बनाएगा, और यही तुम्हारी मनसा सेवा और सेफ्टी का साधन बनेगा। क्या? अशरीरी बनने की प्रैक्टिस। और जिन्होंने ये अभ्यास बहुत काल का किया होगा, अंत में ऐसी आत्माओं को शरीर छोड़ते समय कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आत्मा का सबसे ज्यादा अटैचमेंट अपने शरीर से है। अगर आपने अभ्यास कम किया या नहीं किया है तो ऐसी आत्माओं को शरीर छोड़ते समय बहुत तकलीफ होगी, आत्मा जल्दी शरीर से निकल नहीं पाएगी। तो इससे बार बार डिटैच होने का, अशरीरी बनने की प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है। जितना इससे अटैच डिटैच होके चलेंगे उतना बाबा से सहज अटैच हो जाएंगे। और तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देख कर चलो। मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता हूं। फरिश्ता अर्थात बहुत सारी परिभाषाएं बाबा ने बताई हैं, जिसका इस देह और देह की दुनिया से कोई रिश्ता ना हो बुद्धि से। फरिश्ता अर्थात डबल लाइफ, फरिश्ता अर्थात संपूर्ण पवित्र आत्मा, फरिश्ता अर्थात विश्व कल्याणकारी आत्मा, फरिश्ता अर्थात सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखकर चलने वाली आत्मा। तो जब स्वयं को फरिश्ता समझ कर चलेंगे, दूसरों को उस रूप में देखेंगे, तो वहां पर किसी की कमी कमजोरी नजर नहीं आएगी, हर एक के गुण विशेषता महानता ही नजर आएंगी, तो आपके अंदर भी आती चली जाएंगी और एक विशेष आत्मा महान आत्मा बनते चले जाएंगे। तो ये तीनों अभ्यास रोजाना की मुरलियों में, रोजाना की दिनचर्या में करके चलेंगे, तो उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि आपको वहां योग लगाना नहीं पड़ेगा, लगा रहेगा। और आप अनुभव करेंगे कि सब कुछ करते जैसे कि हम उड़ रहे हैं, लेकिन करना पड़ेगा, विशेष अटेंशन रख के ध्यान देकर सब कुछ करते। कर्म में जहां पर योग की बात आती है, तो अगर प्रैक्टिस कम है तो वहां वो चीज नहीं हो पाती कहीं उसे, तो उसके लिए अभ्यास चाहिए। मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूं, मुख से बोल रही हूं, कानों से सुन रही हूं, हाथों से कर्म, बाबा मेरे से करवा रहा है, सब कुछ करते ये प्रैक्टिस अगर है तो ही। कर्म में अगर आपने इस तरह से योग का अभ्यास कर लिया तो उनके लिए योग बहुत ही सहज और सरल हो गया। अगली पॉइंट, योग के चार्ट को बढ़ाने के लिए, योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए, जो बताया कि शुभ भावना शुभ कामनाओं का होना बहुत जरूरी है। आज संसार में अनेक समस्याओं का कारण, और भी बातें हैं, लेकिन अनेक समस्याओं का कारण है व्यक्ति के मन की नेगेटिव भावनाएं, दुर्भावनाएं, ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत बदले की भावना। तो हमको उन्हें परिवर्तन करना है, कोई बदले ना बदले लेकिन मुझे बदलना है, जो बाबा कहे मुझे उसको उसी समय प्रैक्टिकल में लाकर चलना है। भले कोई हमारे से गलत व्यवहार भी करे, उल्टा सीधा बोले, कुछ भी कह सकता है, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुझे अपने मन में सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना कल्याण की भावना रख के चलनी है। तो उनमें इतनी बड़ी शक्ति है कि आप उसके द्वारा कैसे भी नेगेटिव विचार वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना सकते हैं। लेकिन एक गलत व्यवहार करने वाली आत्मा के प्रति भी हमारे मन में क्या शुभ भावना रहती है या बदल जाती है? क्या विचार है भाई लोगों को, रहती है शुभ भावना ऐसी आत्मा के प्रति या बदल जाती है? बदल जाती है। और इधर से क्या विचार है? ज्यादातर लोगों से यही सुनने को मिलता है, गलत व्यवहार को देखकर भावनाएं बदल ही जाती हैं। थोड़े लोग कहते हैं रहती है सब भावना। तो उसके लिए चाहिए भावनाएं, चाहे कोई कैसा भी व्यवहार हमारे से करे लेकिन हमारी भावनाएं जरा भी नेगेटिव ना हो, उसके लिए आत्मा में ज्ञान और योग का बल निरंतर इमर्ज रूप में रहना चाहिए, तभी भावनाएं शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी रहेंगी। अन्यथा गलत व्यवहार को देखकर ज्यादातर लोगों की भावनाएं बदल जाती हैं। और जहां हम अपने मन में सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना कल्याण की भावना रख के चलते हैं, तो उनमें भी इतनी बड़ी शक्ति है कि आप कैसे उसके द्वारा एक नेगेटिव विचार वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना सकते। एक प्रैक्टिकल का अनुभव, एक घर में एक सास अपनी बहू को बहुत तंग करती थी, रोजाना उल्टा सीधा बोलती, डांटती, फटकारती। ऐसा व्यवहार देखकर बहू बड़ी परेशान हो गई, इस घर में मैं कैसे जीवन बिताऊंगी। तो परेशान होकर पड़ोस की माता के पास गई कि माता जी, मेरी सासू मुझे बहुत तंग करती है, रोजाना उल्टा सीधा बोलती है, डांटती फटकारती है, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गई, कोई विधि बताओ मुक्त होने की। तो पड़ोस की माता ने सलाह दी, जो आप भोजन बनाते हो ना, उसमें दो बूंद जहर की डाल के खिला दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा और माता जी की छुट्टी, सदा के लिए आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो बहू ने प्लान बना ली, प्लान बनाकर और वो उसी दिन मार्केट में कुछ खरीदारी करने के लिए गई। तो जिस दुकान पर वो खरीदारी करने के लिए गई, तो वहां उसकी एक बहुत पुरानी सहेली मिल गई। तो बातचीत करते करते और उससे नहीं रहा गया, तो उसने अपना सारा प्लान अपनी सहेली को बता दिया। तो मैं तो माताओं बहनों की विशेषता ही कहूंगा कि वो कोई बात अपने मन में रख नहीं पाती हैं, जल्दी से दूसरों को बता देती हैं। तो इस विशेषता का फायदा शिव बाबा ने आकर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में उठाया, तो सबसे पहले ज्ञान देने के लिए बहनों को ही निमित्त बनाया, ताकि जल्दी से बाबा का ज्ञान सबको सुना, ठीक है ना। कई लोग जो पूछते हैं ना, भाई ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में बहनें ज्ञान क्यों सुनाती हैं, उसका एक कारण ये है। तो उसने सारा प्लान अपना अपनी सहेली को बता दिया। तो उसकी सहेली जो थी, बाबा की बच्ची थी, ज्ञान में चलती थी, तो उसकी सहेली ने बोला, आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया, लेकिन ये प्लान आप आज से एक महीने के बाद प्रैक्टिकल करना, और आज से मैं जैसे बताती हूँ वैसे करो आप। तो बोल ठीक है, बताइए, करूंगे। तो बोल ऐसा करो, आप अभी से ही अपने मन की भावनाओं को चेंज कर दो अपनी सासू के प्रति, उसके गुण विशेषताएं देखो, उसका बहुत सम्मान करो, इज्जत दो, अपना काम भी, घर का काम भी, सासू का काम बिना बताए कर लो। तो ऐसा अच्छा व्यवहार शुभ भावनायुक्त उनसे आप करो। तो उसने वहीं से अपने मन के विचारों को परिवर्तन कर दिया, मेरी सासू बहुत अच्छी है, उनके अंदर ये गुण विशेषता, उनका सम्मान करने लगी, इज्जत देने लगी, घर का काम भी, अपना काम भी, सासू का काम बिना बताए कर लेती। तो कुछ ही दिनों में ऐसे अच्छे व्यवहार को देखकर जो सासू के मन की भावनाएं थी बहू के प्रति, वो भी परिवर्तन होने लगी कि मेरी बहू में तो बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है, ये तो मेरा सम्मान करती है, आगे रखती है, इज्जत देती है, अपना काम भी, घर का काम भी बिना बताए कर लेती है, मेरा काम भी, ये तो बहुत अच्छी बनती जा रही है। तो जब बहू ने सासू के प्रति शुभ भावना युक्त अच्छा व्यवहार किया, तो उसके परिणाम स्वरूप सासू ने भी बहू के प्रति अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो ऐसे दोनों ने एक महीने तक जब एक दूसरे के प्रति शुभ भावना युक्त सम्मानजनक अच्छा व्यवहार किया, तो जो मरने मारने की बात थी वो तो खत्म ही होगी, दोनों का जीवन सुख शांतमय बन गया। इतनी बड़ी शक्ति है हमारे मन की शुभ भावना। तो प्रयोग करके देखिए, बात वहां अटक जाती है कि कोई हमारे से कुछ भी करता है तो उसके व्यवहार को देखकर हमारे मन में भी उसके प्रति वैसे ही नेगेटिव भावना उत्पन्न हो जाती है, तो बजाय वो हिसाब किताब चुकतु होने के और ही बढ़ता चला जाता है। तो होंगी ये सब बातें, लेकिन मुझे अपने मन में जरा भी किसी के प्रति नेगेटिव भावना नहीं रखनी है। तो अनेक प्रकार के जो हिसाब किताब में आपसे आएंगे, चुकतु होके और सहज चले जाएंगे। तो मुझे सदैव विश्व कल्याणकारी बनना है। तो विश्व कल्याणकारी अर्थात जिसके मन में सदा ही सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना रहती हो, तो ही विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे ना। और इसके साथ साथ कहीं भी कोई परिस्थिति समस्या आए, वहां हम बाबा को अर्पित कर दें, दिल से याद कर बाबा को बता दें, बाबा ये बात ऐसे ऐसे आप देख लेना। हमारा तो यह अनुभव है, सचमुच बाबा उस समस्या का वो समाधान निकाल देता जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन किन को समय पर बाबा की मदद मिलती है? प्रयोग तो बहुत करते होंगे, लेकिन कई कहते हैं बाबा तो हमारी सुनता ही नहीं है। क्यों पूछो, हम बाबा की कितना सुनते हैं उतना ही बाबा हमारी सुनेंगे। एक माता मेरे पास आई, कहने लगी भाई जी मेरा एक बच्चा है और बहुत छोटा है, लेकिन मेरी एक बात नहीं मानता, बहुत तंग करता है, मेरे को बहुत डिस्टर्ब करता है, मैं बहुत परेशान हो गई, क्या करूं। तो मैंने माता जी को कहा, माता जी आप अपने आप से पूछो, आप बाबा की बात कितना मानते हैं, उतना ही बच्चा मानेगा है? तो हंसने लगी है? तो बाबा की मदद किन को समय पर मिलती है, जो हर नियम मर्यादा का पालन करके चलने में जो बाबा को सहयोग करते हैं, उनको कदम कदम पर बाबा की मदद मिलती रहेगी। मान लो बहन जी आपको कोई ऐसी सेवा दे दे जो आपने कभी की नहीं हो, तो सोचेंगे ना मैं सेवा कैसे करूंगी या करूंगा, लेकिन आप बाबा की सेवा समझकर हां कर लेते हैं तो फाइनल बात है कि बाबा आपसे वो कार्य करवा लेगा। इसलिए बाबा की सेवा में कभी भी ना नहीं करना है, सदा हां जी का पाठ पक्का करके चलना है, क्योंकि कराने वाला तो वो बैठा है। अभी हम आज ही आया हूं मैं आगरा इटावा गया था भट्टी की सेवा, तो एक जगह क्या हुआ, क्लास था तो बड़ी बहन जी को फोन किया हमने, बहन जी हम आ रहे हैं, और मैंने कहा वहां से क्लास करा के और आपके ही कनेक्शन में एक दूसरा सेंटर है वहां जाना है, वहां दो बहनों का समर्पण डे मना रहे हैं वो, तो मैंने कहा आपको भी निमंत्रण दिया होगा और आप भी जाएंगे वहां, तो आपके साथ ही हम गाड़ी में चले चलेंगे। तो ये मेरी बात सुनकर वो बहन जी बोलती है नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, और मैं तो ये कहूंगी आप भी वहां नहीं जाओ, ये तो गड़बड़ हो गया मामला भाई है। अब बड़ी बहन ऐसे कहे और मैं फिर जाऊं तो वो भी अच्छा नहीं। तो मैं बाबा को याद करके कहने लगा बाबा अब इस बात का समाधान क्या हो सकता है, किसमें कल्याण है किसमें सेवा है वो आप जानते हो। मैंने कहा जिसमें सेवा हो कल्याण हो वो आप कराओ बस। मैंने ऐसे दिल से बाबा को याद कर बता दिया। हमने उस सेंटर पे क्लास किया, नाश्ता किया, उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकल रहे नाश्ता करके, तो बड़ी बहन जी का कमरा उसी रास्ते में ही था, तो कमरे में बैठी थी वो भी नाश्ता कर रही थी, तो मेरे को बुलाया ऐसे, अच्छा भाई जी मैं भी चल रही हूं आप मेरे साथ चल लो। तो कहीं भी कोई समस्या जो आपकी लिमिट से बाहर की बात है उसको बाबा को दिल से याद कर बता दो। मैंने कहा ना बाबा उस समस्या का वो समाधान निकाल देता है जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन कब, जब हम पूरी तरह से उसकी हर श्रीमत आज्ञा का पालन करके चलेंगे तो हमको भी समय पर उसकी मदद मिलेगी। और जहां उसको हम निरंतर साथी बनाकर चलते हैं, कहीं भी जाओ वाओ कोई सेवा करो बाबा आ जाओ मेरे साथ ये सेवा करवाओ ये कार्य करवाओ, देखो आह्वान कर लो उसका, उसको साथी बनाकर चलो, तो वहां कदम कदम पर कैसे सफलता की अनुभूति होती रहेगी आपको। एक प्रैक्टिकल का अनुभव, एक बार हम नए नए मधुबन निवासी बने थे, हम लगभग मुझे 43 इयर्स हो गए यहाँ रहते हुए, तो एक साल ही हुआ था उस समय की बात है, तो उस समय जरा भी कुछ क्लास कराने का भाषण करने का अभ्यास नहीं था हमें, तो उस समय तो शांतिवन ज्ञान सरोवर कुछ नहीं था, जो था पांडव भूमि था, सभी दादियां यहीं रहती थी, बाबा भी यहीं आते थे ओम शांतिवन। तो मनोहर दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया कि जिन भाई बहनों को क्लास कराना भाषण करना नहीं आता है उनके अंदर वो कला आए। तो दादी ने मेरे को बोला कि आपको भाषण करना है, हमने चुपचाप सुन लिया, ना हाँ किया ना ना किया, क्योंकि भाषण करना आता नहीं है तो हाँ भी कैसे करें, और दादी ने कहा तो ना भी कैसे करें। और मैं बाबा के कमरे में गया और मैंने बाबा को याद कर कहा कि बाबा मेरे को दादी ने बोला भाषण करना है तो मेरे को तो भाषण करना आता नहीं है, मैं कैसे भाषण करूंगा। तो बाबा की तरफ से टचिंग मिली, बच्चे बाबा ने तुमको वरदान दिया है, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन हो, बस ये पॉइंट स्मृति में आते ही थोड़ा शक्ति आ गई। इसका मतलब हमने कल पहले भी भाषण किया है, सफलता पाई है, फिर से वही करना है तो कौन सी बड़ी बात है। तो कल पहले की स्मृति आते ही थोड़ा शक्ति आ गई। अच्छा, प्रोग्राम ऐसा था, टॉपिक किसी को बताए नहीं जाएंगे, ज्ञान योग के टॉपिक होंगे, चिट्ठी बनाकर रख दी जाएंगी, उसी समय आओ, चिट्ठी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो, ऐसा वो प्रोग्राम था। एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, और उसका नाम रखा गया काल्पनिक भाषण प्रतियोगिता, अर्थात आप जो हैं वो नहीं कल्पना करके बोलिए, दूसरे बन के बोलिए। तो एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, सब लोग देखने सुनने के लिए आए, रात के 8:30 बजे ओम शांति भवन का हाल फुल भर गया है, सीजन के समय ये प्रोग्राम हो रहा था। तो सब कई दादियां दादे आगे बैठे हैं, और जिन भाई बहनों को कुछ बोलना नहीं आता हो उनको स्टेज पर बिठा दिया गया है। 7 बहनें 7 भाई सब नए नए, जिनको क्लास कराना भाषण करना नहीं आता था, ऐसे लोगों को ही सिलेक्ट किया गया क्योंकि उनको सिखाना है, और उनमें से एक हम भी थे। प्रोग्राम शुरू, आप सोच सकते हैं कैसा वो सीन होगा। प्रोग्राम शुरू हुआ, 3 लोगों ने हमारे से पहले बोला, 4th नंबर हमारा आया, हम भी गए, चिट्ठी उठाई और खोल के देखा तो बड़ा वंडरफुल टॉपिक निकला। टॉपिक निकला कि यदि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो एक तरफ पढ़ के हंसी आए, दूसरी तरफ विचार चले कि इस पर हम क्या बोले, तो बिल्कुल ही अपने से अलग टॉपिक है। अच्छा, माइक के आगे खड़े हैं, बोलना ही अपने को, सोचने का भी टाइम नहीं। तो मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आया यार, मैंने बाबा को याद कर कहा कि बाबा अभी देखो मेरे को तो कुछ नहीं आता है, अभी आप ही आओ और आप ही भाषण कराओ, और ऐसा नहीं हो लोग हंसी उड़ाएं, पहली बार स्टेज पर आए, भाषण अच्छा होना चाहिए। ये भी बाबा को याद कर कह के बोल दिया, और जैसे ओम शांति कह के बोलना शुरू किया तो सचमुच ऐसा लगने लगा जैसे कि बाबा ऊपर से बुद्धि में पॉइंट टच कर रहा हो, पॉइंट स्मृति में आती गई, हम बोलते गए और हर पॉइंट के पीछे लोगों की इतनी ताली बजी, इतना अच्छा बोल गए कि उसमें 1st नंबर आया। तो इस तरह से यदि भगवान को हम साथी बनाकर चलते हैं किसी भी कार्य में, तो वहां असंभव भी संभव हो जाएगा। एक स्लोगन लास्ट में, एक स्लोगन आप लोगों ने देखा होगा, कई जगह लिखा हुआ, बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। और सचमुच हम ये एक जिम्मेवारी निभाएं, बाबा को याद करें, वो हमारे लिए सब कुछ करता है। एक प्रैक्टिकल का अनुभव, समस्या को सामने रखें, हम अपनी एक जिम्मेवारी निभाएं, बाबा को याद करें। एक जगह हम भट्ठी की सेवा में गए, तो 2 दिन की भट्ठी थी, और उसके बाद एक एक दिन की उन्हीं के कनेक्शन में अलग अलग जगह 3 जगह भट्ठी थी। तो एक ही दिन की भट्ठी होने के कारण दिन में भोजन के बाद फिर से तुरंत क्लास शुरू हो जाते थे, तो 3 दिन से हमको दिन में रेस्ट नहीं मिला था, काम चल रहा था लेकिन रेस्ट की थोड़ी कमी हो रही थी। तो 4th दिन मॉर्निंग क्लास कराने के लिए, वहां की बेंजी ने एक 4th सेंटर पर भेज दिया। जब 4th सेंटर पर पहुंचे तो वहां की बेंजी ने जाते ही प्रोग्राम दे दिया, भाई जी एक क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पर क्लास कराने जाना है। अब मुझे तो वही क्लास कराना थोड़ा सा भारी लग रहा था, और बहन जी ने और आगे का प्रोग्राम दे दिया। बहन जी की बात हमने सुन ली, उनको कुछ नहीं बोला, और मैं बाबा को याद करके ही लगा, बाबा अभी देखो ये शरीर रूपी गाड़ी तो रेस्ट मांग रही है, और बहन जी ने प्रोग्राम दिया है क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पर क्लास कराने जाना है, तो कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना। मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है, सेवा कराने वाले तो आप हो, ऐसे मैंने बाबा को बता दिया। और बस भगवान जी के लिए तो 1 सेकंड की बात है, क्लास पूरा किया, नाश्ता किया, और बाबा ने उसके बाद बहन जी की बुद्धि को आकर थोड़ा टच किया, और बहन जी आके कहती है, अच्छा भाई जी मेरे को ऐसा विचार आया कि अभी आप थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद जाना क्लास कराने। वाह 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 वाह, इसका मतलब हमारे मन का एक एक संकल्प उसके पास पहुंच रहा है। तो इस तरह से इन कुछ एक बातों को अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें, तो अनेक कार्यों में सह सफलता प्राप्त कर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। यही हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति।